का बंदा है, क्योंकि जब तक वो ना कहेंगे कि मैं इमाम हूं हम कैसे समझेंगे, और वो उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक कि उनको अल्लाह का हुक्म ना हो, जब तक अल्लाह सुबहानहु ताला उनको हुक्म ना दे कि आप अपने आप को जाहिर कर दीजिए, समझे आप। जबकि अहले सुन्नत कहते हैं कि अभी वो पैदा नहीं हुए हैं, वो लोग भी ये कहते हैं कि जो इमाम महदी होंगे वो इमाम अस्करी ही की औलाद से होंगे, उन्हीं की नस्ल से होंगे, वो भी फर्जंद अली अली होंगे, फर्जंद हसन होंगे, फर्जंद हुसैन होंगे, फर्जंद अली उन्नकी, फर्जंद हसन अस्करी होंगे, यहाँ तक भी मानते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इमाम महदी जो होंगे इमाम अस्करी की औलाद में पैदा होंगे क़यामत से पहले, जब वो पैदा होंगे, अभी पैदा नहीं हुए हैं, समझा। लेकिन हम ये कहते हैं, शिया लोग ये कहते हैं कि इमाम सामर्रा में इमाम अस्करी के सुल्ब से उन्हीं की अहलिया नरजिस खातून के बतन से पैदा हो चुके और अभी तक जिंदा है। 5 साल की उम्र तक वो जाहिर थे, 5 साल की उम्र में 2055 में इमाम गायब होते हैं, यानी अब वो रहते तो हैं लेकिन लोगों की नज़रों में नहीं आते, लोग नहीं समझ सकते थे। एक ज़माना था, दो गैबत है, एक गैबत सोगरा है ना, जो पहली गैबत हुई थी वो गैबत सोगरा मानी जाती है, यानी छोटी गैबत, सोगरा यानी छोटी गैबत, गैबत कुबरा यानी बड़ी गैबत। तो गैबत सोगरा और गैबत कुबरा में क्या फ़र्क है, छोटी गैबत और बड़ी गैबत में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि गैबत सोगरा में इमाम के 4 नुमाइंदे थे और उन 4 नुमाइंदों से इमाम बराह रास्त राबता किया करते थे, और एक के फौत होने के बाद में दूसरे को मुतायन करते थे, दूसरे के फौत होने के बाद में तीसरे का तारुफ करवाते थे कि अब मेरे बाद तुम मेरी नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन जब ये 4 नुमाइंदे गुजर गए, है ना, मालूम है किसी को इनके नाम? हाँ बोलिए। सईद रो, हाँ मोहम्मद, मोहम्मद बिन अली समरी, हाँ। तो ये जो 4 नुमाइंदे थे इमाम के, हैं, ये जो 4 नुमाइंदे थे, ये इनके जाने के बाद में गैबत कुबरा का आगाज होता है, इनके बाद गैबत कुबरा का। तो गैबत कुबरा का आगाज जब से हुआ है ये अभी तक जारी है। ये जो हमारा दौर है हम गैबत कुबरा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जब तक ज़हूर नहीं होगा ये गैबत कुबरा का सिलसिला जारी रहेगा कि हम इस गैबत कुबरा में इमाम को देख तो सकते हैं लेकिन पहचान नहीं सकते कि यही इमाम है, क्योंकि इमाम को इख्तियार नहीं है कहने का कि मैं ही इमाम हूँ, समझे। ये ऐसा है, मिसाल के तौर के ऊपर जो है, जब नबी करीम तो बेसस से पहले भी नबी थे, समझे आप, लोग उनको बेसस से पहले भी देखते थे, उनसे मिलते थे, लेकिन ये नहीं समझते थे कि यही रसूल हैं। जब तक आपने ऐलान रिसालत नहीं किया, जब तक आपने ऐलान नबूवत नहीं किया, लोग आपसे मिलते तो थे लेकिन पहचानते नहीं थे कि आप ही रसूल हैं। लेकिन जब आपने 40 बरस की उम्र में जब गारे हरा में अपनी नबूवत का ऐलान किया कि मैं रसूल बन गया हूँ, मैं तुम्हारा रसूल हूँ, तब लोगों ने पहचाना कि हाँ हम जिससे मिलते थे यही वही रसूल थे, ये वही रसूल हैं, समझा। जब लोगों ने पहचाना कि अरे हम तो इनसे मिला करते थे, तो ऐसे ही होगा, जब इमाम का जहूर होगा तो लोग कहेंगे कि अरे हम तो इनसे मिला करते थे, हमने तो इनको देखा था, ये तो हमारी फला मुश्किल को हल किए थे, इनसे फला मुकाम पर हमारी मुलाकात हुई थी, है ना, जब हम हज पर गए थे तो इनसे मुलाकात हुई थी, यही तो थे जिन्होंने हमारी मदद की थी। मिसाल के तौर मिलते हैं इमाम, लोग उनको देखते हैं लेकिन ये नहीं समझ सकते कि यही इमाम है, ये नहीं पहचान सकते कि यही इमाम है। जब जहूर होगा तो लोग कहेंगे कि हाँ हमने इन्हें देखा है, ये जाना पहचाना चेहरा मालूम होता है, कहीं इनको जरूर देखा है, इनसे कहीं जरूर मुलाकात हुई है, समझा। दूसरी बात यह है कि अब शियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई किस तरह से एक आदमी इतने 100 बरस से, 1200 बरस से, 1000 बरस, 1200 बरस से एक इंसान जिंदा रहे, कैसे आदमी जिंदा रह सकता है, समझा। तो इसका जवाब ये है कि जब अल्लाह किसी को जिंदा रखना चाहे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। दूसरी बात यह कि क्या इंसान इससे पहले कभी इतना उम्र जिंदा नहीं रहे, क्या इंसान के लिए ज़रूरी है, वाजिब है कि जो है, क्या साइंस टेक्नोलॉजी ये कहती है कि क्या इंसान जो है ना 70 साल का होते ही मर जाना चाहिए, या खुद ब खुद मर जाता है 70-80 साल का होते ही, कोई साइंस ऐसी ये बात नहीं कहती, कोई इल्म ये नहीं कहता है, क्योंकि इससे पहले कितने लोग थे जो बड़ी बड़ी उम्रें गुजार चुके हैं। जनाब नूह की तबलीगी जिंदगी खुद 950 बरस है, 950 बरस उन्होंने तबलीग किए, है ना। तो जब जो है जनाब नूह जिंदा रह सकते हैं, और इस तरह के और भी कई इंसान ऐसे गुजरे हैं जो है कई 100 साल जिंदगी गुजारे हैं इस दुनिया में, 100 साल रहे हैं, तो क्या मुश्किल है कि जो है इमाम 1200 साल जिंदा रहे, और अगर अल्लाह चाहेगा तो और भी ज़्यादा रह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इंसान जो बीमार पड़ता है वो ग़िज़ाओं की बेइतदाली की वजह से, मौत जो आती है अदम तवाज़ुन की वजह से, समझ रहे हैं आप लोग बात, बीमार जो पड़ता है वो ग़िज़ा में बेएहतियाती करने की वजह से, समझो, जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ता है, बीमार पड़ने के बाद में जो है ज़्यादा बीमार पड़ गया तो हो सकता मौत भी आ जाए, समझे। तो लिहाजा एक इंसान का कई 100 साल तक जिंदा रहना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो लिहाजा अगर इमाम जिंदा हैं तो इमाम जिंदा रह सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है जिंदा रहना, समझे आप। और ये कि इमाम महदी के ताल्लुक से अल महदी मिन्ना अहलल बैत, के महदी हम अहले बैत में से होंगे, जो इमाम महदी का इनकार किया गोया वो काफिर है, और वो काफिर की मौत मरेगा, ये नबी करीम के मुख्तलिफ इरशादात है, समझे। जिसने भी महदी का इनकार किया वो काफिर हैं, नबी करीम फरमाते हैं कि महदी हम में से होंगे और महदी का इनकार कुफ्र है। तो लिहाजा किसी कोई भी मुसलमान इमाम महदी का इनकार नहीं करता है, किसी न किसी तरीके से सही इमाम महदी को मानता है, कोई कहता है पैदा हुए, कोई कहता है पैदा नहीं हुए, जहूर होगा और वो आएंगे और दुनिया को अदल इंसाफ से भरेंगे, सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, तमाम मुसलमान इन रिवायतों को मानते हैं कि इमाम महदी का इनकार कुफ्र है, इमाम महदी का इनकार कुफ्र है, इमाम महदी का इनकार इंसान को काफिर बना देता है, और मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानेही माता मीतन जाहिलिया, जो शख्स भी अपने ज़माने के इमाम को, अब हमारे ज़माने के इमाम कौन है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, और उससे पहले जो जो लोग गुजरे उनके इमाम, हाँ इमाम अस्करी, उससे पहले इमाम अली उन्नकी, है ना, तो जो भी अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत क्या है, जाहिलियत की मौत है। तो गोया जो है ना, गोया जो है जिस तरीके से नबी के मबूस होने से पहले जो जो ज़माना था उसको ज़माने जाहिलियत कहते हैं, उसको ज़माने जाहिलियत कहते हैं, जाहिलियत का ज़माना कहते हैं। तो गोया उसकी मौत ऐसे जैसे उसने इमाम को दरक ही नहीं किया, जैसा उसने जो है उसके नज़दीक इमाम आए ही नहीं, उस वो इमाम को पहचानता ही नहीं, लिहाजा उसकी मौत जाहिलियत के ज़माने की मौत की तरह है। जाहिलियत का ज़माना किसको बोलते हैं, वो ज़माना जो बेसते नबी से पहले का है, नबी करीम के मबूस होने, मबूस होने का मतलब क्या है, ऐलान नबूवत है ना, जब आप नबी करार पाए, जिस वक्त ऐलान हुआ कि आप नबी है ना, उससे पहले का जो ज़माना है उस ज़माने को क्या बोलते हैं, ज़माने जाहिलियत। तो अगर कोई भी शख्स जो है ना अपने ज़माने के इमाम को जाने बगैर मर जाए उसकी मौत क्या होगी, जाहिलियत के ज़माने की मौत होगी, समझा। तो लिहाजा ये दौर को क्या बोलेंगे, दौरे इल्म बोलेंगे, दौरे इमाम को दौरे इल्म बोलेंगे, दौरे जाहिलियत नहीं बोलेंगे, क्योंकि इल्म का दरवाज़ा खुला हुआ है ना, बाबुल इल्म जिंदा है, इमाम मेहदी जिंदा है, इसका मतलब क्या है, रसूल अकरम जिंदा है, इमाम मेहदी जिंदा है यानी अली मुर्तुजा जिंदा है, इमाम मेहदी जिंदा है यानी इमाम हसन जिंदा है, समझे आप, यानी इमाम मेहदी रसूल अल्लाह की सूरत में जिंदा है, अली मुर्तुजा की सूरत में जिंदा है, हसन मुश्तबा की सूरत में जिंदा है, गोया इमाम जिंदा नहीं है बल्कि इमाम हुसैन मौजूद हैं इस वक्त, क्यों, इसलिए कि इमाम ज़माना हामिल अफकार हुसैनी है, हामिल अफकार हसनी है, हामिल अफकार अलवी है, यानी तमाम अइम्मा के अफकार के हामिल हैं, उनके नज़रियात के हामिल हैं, समझे बात। इमाम ज़माना का मुख्तसर तारुफ आप समझिए और जहन में बिठाइए, और वो ये है कि अब इमाम के ताल्लुक़ से बहुत सारी रिवायतें हैं, है ना, इमाम के मारिफत के ताल्लुक़ से बहुत सारी बहसें हैं, है ना, इमाम के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, हम सारी बातें इस वक्त बयान नहीं कर सकते और न ही तमाम मालूमात हम एक साथ हासिल कर सकते हैं, तो लिहाजा हमको कुल्ली तौर के ऊपर कुछ बातें मारिफत इमाम ज़माना के ताल्लुक़ से मालूम होना चाहिए, वरना कोई भी आएगा कोई भी बात इमाम की मारिफत के बारे में बयान करके चला जाएगा कि इमाम ऐसे होंगे और इमाम जब ज़ाहिर होंगे ज़हूर होगा तो इमाम ऐसा ही करेंगे वैसे करेंगे, आपको क्या पता कैसे कैसे करेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि इमाम कौन है ना। जो भी जिस तरह की बातें करें आप उसको कबूल कर लेंगे, है ना, इमाम के ताल्लुक से मिसाल के तौर पर लोग दिमाग में बिठाए हुए हैं, लोगों के तसव्वुर में ये है कि नऊज बिल्ला इमाम जो है ना एक तलवार लेके जल्लाद की तरह नऊज बिल्ला आएंगे और सबके सर खलम कर देंगे और सबका खून बहा देंगे, वो आएंगे तो जो है ना इतने उलमा का कत्ल कर देंगे, इतनी आवाम का कत्ल कर देंगे, जो बात नहीं मानेगा उसको उसका जो है सर कलम कर देंगे, उसका खून बहा देंगे, है ना, ऐसे जो है ना दिमाग में बातें बिठाए हुए हैं, जबकि ये गलत है। इमाम नऊज़ बिल्ला जो है वो कोई जल्लाद की तरह नहीं आएंगे, इमाम नऊज़ बिल्ला जो है क्यों, इसलिए कि इमाम जो है वो कोई हलाकू और चंगेज़ ख़ान के नऊज़ बिल्ला बेटे नहीं हैं जो हलाकू की तरह आएंगे, हम ये जो है ना तसव्वुर جو ہلاکو کا تصور ہے، جو چنگیز خان کا تصور ہے، جو ہے ظالم بادشاہوں کا تصور ہے کہ جو اپنے جو آتے ہی بس تلوار چلاتے ہیں اور جو ہے نا لوگوں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں، اس طرح کا تصور ہم نے امام کے تعلق سے بنا رکھا ہے، ہے نا؟ جبکہ امام کا تصور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہو تو پھر کون امام کا انتظار دیکھیں گے؟ کیا کوئی اپنی گردن کٹانے کے لیے امام کا انتظار دیکھیں گے کہ امام آئیں گے تو ہماری گردن کاٹیں گے؟ تو جو گردن کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں فرض کیجئے، کیا ہم اس کا انتظار دیکھیں گے کہ وہ آ کے ہماری گردن کاٹے؟ ہاں؟ کوئی بھی ایسی شخصیت کا انتظار نہیں دیکھیں گے. لہذا امام وہی کام کریں گے جو کام نبی کریم نے کیا ہے، رسول کریم نے کیا ہے. ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جو کام ان کے آبا و اجداد نے نہیں کیا تھا. گناہگاروں کو بھی وہ پہلے سمجھائیں گے، مشرکوں کو بھی وہ تبلیغ کریں گے. کیا نبی کریم آتے ہی کیا مشرکوں کے گلے کاٹ دیے، کافروں کے گلے کاٹ دیے، ان کے پیٹ چیر دیے، ان کے پیٹ میں جو ہے نا چاقو گھونپ دیے؟ ایسا کرے نبی؟ مشرکین کے پیٹ کاٹ دیے، علماء کے سر کاٹ دیے؟ کاٹے رسول اللہ آتے ہی تمام علماء کے سر کاٹ دیے، تمام مشرکین کے پیٹ کاٹ دیے، ان کے پیٹ میں جھرا گھونپ دیے؟ ایسا کیے؟ نہیں کیے. تو جو کام نبی کریم اپنی زندگی میں نہیں کیے، وہ کام امام مہدی بھی نہیں کر سکتا. علی مرتضیٰ نے کیا کیا کہ کسی بے گناہ کو مار دیا کرتے تھے، کسی کو تلوار سے دھمکاتے تھے کہ ذوالفقار آ گئے اب تم لوگ سدھر جاؤ زبردستی، کسی کو ڈراتے تھے؟ کبھی حضرت علی تلوار لے کے لوگوں کو ڈرائے؟ تو جو کام حضرت علی نے نہیں کیا وہ امام مہدی بھی نہیں کریں. امام حسین نے کیا کبھی کسی کو ستایا؟ تو جو کام امام حسین نے نہیں کیا وہ کام امام مہدی بھی نہیں کریں. رسول اکرم نے کیسے تبلیغ کیا، لوگوں کو سمجھایا، سمجھا؟ لوگوں کو سمجھایا، ایک ایک آدمی کو جو ہے نا پکڑ پکڑ کے سمجھایا. وہ اگر اسلام نہیں لاتا تھا تو نبی رویا کرتے تھے، رو کے اس کے حق میں دعا کرتے تھے کہ پروردگار یہ مشرک نور ہدایت عطا فرما، اس کے دل میں جو ہے نور ایمان عطا فرما، اس کو تو مسلمان بنا دے، اس کو ہدایت دے، یہ گمراہ ہو چکا ہے، اس کی مدد کر کے اس کو جو ہے نا حلقہ اسلام میں لیا. نبی کریم دعا کرتے تھے مشرکوں کے لیے، سمجھے؟ ان کے لیے کوشش کرتے تھے، دن رات انہیں مسلمان بنانے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ مکے کی زندگی میں تھی، یہ باتیں تھیں. لیکن مدنی زندگی میں نبی کریم کیا جنگ نہیں لڑے؟ مدنی زندگی میں مدینے میں آنے کے بعد کیا جنگ بدر نہیں ہوئی؟ ہوئی. جنگ احد نہیں ہوئی؟ جنگ خندق نہیں ہوئی؟ ہوئی. اس وقت تلوار اٹھائے نبی یا نہیں اٹھائے؟ اٹھائے اٹھائے. جنگ بدر میں لڑے نبی یا نہیں لڑے؟ دشمنوں سے جو ہے جنگ لڑے یا نہیں لڑے؟ ہاں. تو اسی طریقے سے امام مہدی بھی تلوار نکالیں گے. ایسا نہیں کہ امام مہدی تلوار نہیں نکالیں گے، تلوار نکالیں گے، مگر ان لوگوں کے خلاف جو امام سے جنگ کرنے کے لیے آئے، جو لشکر امام سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جو امام کی تحریک اور امام کے مقاصد میں حائل ہو کر امام کے مقابلے میں آ کے جنگ لڑتا ہے. جس طرح سے آج کے زمانے میں مثال کے طور پر اسرائیل حملہ کرتا ہے तो क्या अली के मानने वाले, नबी के मानने वाले, इमाम मेहदी के मानने वाले सिपाही क्या खामोश बैठे रहेंगे? वो लोग भी जवाब देते हैं, लेकिन बिला वजह नहीं करते। जब उन पे हमला होता है या हमले के लिए कोई लश्कर आता है तो उसके लिए जो है ना वो लोग जो है तैयार होते हैं, यानी जो आपसे लड़ने के लिए आया आप उससे लड़ते हैं, जो मैदान में आए आपसे आपको मारने के लिए तब आप जो है ना उसको मारते हैं। लेकिन घर में बैठने वाले हर यहूदी को नहीं कत्ल कर देते, बल्कि जो लड़ने आने वाली जो उनकी फौज है, जिस तरीके से खैबर में जो जमा हुए थे वो तमाम के तमाम सिपाही थे जो मुसलमानों को कत्ल कर देना चाहते थे, तब जो है जंग खैबर हुई। तो वो जो यहूदियों का खिला था उसमें सारे फौजी यहूदी रहा करते थे, यानी वो लोग रहते थे जो बरसरे पैकार थे, जो ख़त्म कर देना चाहते थे, जिनकी नीयत ये थी कि वो इस्लाम पर हमला करें और मुसलमानों पे हमला करें और मुसलमानों को तहस नहस करें, है उन लोगों के खिलाफ जंग लड़ी गई है ना, जो मारने के लिए तैयार थे। तो इसी तरीके से इमाम मेहदी भी जंग लड़ेंगे, हुकूमतों से जंग लड़ेंगे, वो भी तलवार उठाएंगे, मगर वैसे ही उठाएंगे जैसे नबी करीम उठाए थे। क्या इमाम हुसैन तलवार नहीं उठाए? उठाए। कहां? करबला में उठाए। रास्ते में लोगों का खून बहाते हुए नहीं गए बिना वजह के? जो यहूदी नजर आया, जो काफिर नजर आया, जो मुशरिक नजर आया, इमाम हुसैन सबके गले काटते हुए करबला पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। तो जिस तरीके से इमाम हुसैन ने नहीं किया था वो काम जो है इमाम मेहदी भी नहीं करेंगे, और जो काम इमाम हुसैन ने किया था यानी जुल्म के खिलाफ क़याम, कुफर के खिलाफ क़याम करना, तागूत के खिलाफ तलवार उठाना, ये काम इमाम मेहदी भी करेंगे, और जालिम हुकूमतों से नबर्द आजमा होंगे। जो और जिस तरह से इमाम हुसैन ने दुश्मनों के खिलाफ शिमर व यजीद के खिलाफ तलवार चलाई थी, इसी तरह इमाम हुसैन भी चलाएंगे, वो इमाम मेहदी भी चलाएंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि इमाम हुसैन की शहादत हुई लेकिन इमाम मेहदी क्या करेंगे? यजीदी किरदार वालों से मुकाबला करेंगे और अपने वक्त के यजीदों पर गलबा पा जाएंगे, ज़ाहरी फतह भी हासिल करेंगे और उनको कत्ल करके उस जंग में शहीद नहीं होंगे बल्कि जिंदा रहेंगे, खून हुसैन का बदला लेंगे, इमाम हुसैन के क़याम का बदला लेंगे, यानी न सिर्फ इमाम हुसैन का बल्कि तमाम मजलूमों का, तमाम सितम दीदा लोगों का, तमाम वो लोग जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, ऐसे जालिमों से इमाम क्या करेंगे? बदला लेंगे, जालिमों से बदला लेंगे, जिन लोगों ने जुल्म किया है ऐसे लोगों से इंतकाम लेंगे। इसलिए कि हर दौर में यजीद के नुमाइंदे रहते हैं, आज भी यजीद के मानने वाले, यजीद के नुमाइंदे, यजीद की तरह जुल्म करने वाले, यजीद की तरह सितम करने वाले, यजीद की तरह लोगों का घर उजाड़ने वाले, यजीद की तरह बच्चों को यतीम करने वाले, यजीद की तरह औरतों को विवाह करने वाले, यजीद की तरह से माल और असबाब लूटने वाले, यजीद की तरह से घरों को लूट लेने वाले लोग आज भी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इमाम क़याम करेंगे, ऐसे लोगों ऐसे इसराइलियों के खिलाफ, ऐसी यहूदियत के खिलाफ जो इस्लाम के खिलाफ है। हर यहूदी नहीं, हर नसरानी नहीं, हर हिंदू नहीं, हर मुशरिक नहीं, बल्कि वो लोग जो जालिमीन हैं, समझे? अब लिहाजा मुख्तसर सा तारुफ ये है कि इमाम का नाम क्या होगा, तो वही नाम होगा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और इमाम मेहदी की कुन्नियत क्या होगी? वही कुन्नियत होगी, ये कुछ मत बोलिए, वही कुन्नियत होगी जो हमारे नबी करीम की कुन्नियत है, और इमाम मेहदी का किरदार कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे हमारे नबी करीम का किरदार। इमाम मेहदी के ظہور کے بعد امام کے طریقہ تبلیغ کیا ہوگا, کیسے وہ تبلیغ کریں گے؟ جیسے ہمارے نبی کریم تبلیغ کیا کریں. امام مہدی کی سنت و سیرت کیا ہوگی, ان کی شکل و صورت کیا ہوگی, ان کا قد و قامت کیا ہوگا, ان کی سیرت و صورت کیسے ہوگی؟ بالکل رسول اللہ کی طرح ہوگی. ان کی صورت کیسی ہوگی؟ نبی کی صورت کی طرح ہوگی. ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا کیسا ہوگا؟ امام کا لہجہ کیا ہوگا؟ وہی جو نبی کریم کا تھا. امام مہدی کیسے بات کریں گے؟ جیسے رسول اللہ کیا کرتے تھے. امام مہدی آنے کے بعد کیا کریں گے, کس طرح سے جو ہے نا اپروچ ہوں گے, کس طرح سے لوگوں سے ملاقات کریں گے, کیسے کریں گے؟ جیسے ہمارے نبی کریم. نہ صرف صورت نام ہمارے نبی کا نام ہوگا. لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم کا نام امام مہدی صرف نام میں مشترک ہیں کہ ان کا نام اور نبی کا نام ایک ہوگا, ان کی کنیت اور نبی کی کنیت, ان کا لقب اور نبی کا لقب ایک ہوگا. صرف نام اور کنیت اور لقب ہی نبی کی نہیں ہوگی, بلکہ ان کا کردار بھی نبی کریم کا کردار ہوگا, ان کی سیرت بھی نبی کریم کی سیرت ہوگی, ان کی رفتار و گفتار بھی نبی کی رفتار و گفتار ہوگی. وہ ایسے ہی چلیں گے جیسے نبی چلا کرتے ہیں, وہ ایسے ہی بیٹھیں گے جیسے نبی بیٹھا کرتے تھے, وہ ایسے ہی اٹھیں گے جیسے نبی اٹھا کرتے تھے. تو جن لوگوں نے رسول اللہ کی صورت نہیں دیکھی, جن لوگوں نے رسول اللہ کی سیرت نہیں دیکھی, جن لوگوں نے رسول کو اٹھتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا, جن لوگوں نے رسول کی جنگ نہیں دیکھی, جن لوگوں نے رسول کی صلح نہیں دیکھی, جن لوگوں نے رسول کی تبلیغ نہیں دیکھی, وہ لوگ امام مہدی کی شکل میں رسول اللہ کو دیکھیں گے. امام مہدی اتنے ہی نرم مزاج ہوں گے جتنے نبی کریم ہوتے, اتنے ہی خلیق ہوں گے, خلق عظیم پر فائز ہوں گے, اخلاق کریمہ پر فائز ہوں گے. جس طرح سے نبی کو دیکھ کے لوگوں کو ڈھارس ملتی تھی, نبی کو دیکھ کر یتیموں کو ڈھارس ملتی تھی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی جب گزرتے تھے راستے سے تو سلام کرتے تھے. اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ امام مہدی کی معرفت حاصل کرنا ہے کہ کیسے ہوں گے امام مہدی, ہم کیسے پہچانیں گے امام مہدی کو. تو اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے, آپ لوگوں کے لیے, کہ آپ سنت نبی کا مطالعہ کریں, سیرت رسول کا مطالعہ کریں, اور یہ جانیں کہ نبی کیسے چلا کرتے تھے, نبی کی زندگی کیسی تھی, نبی کیسے رہا کرتے تھے, ہے نا. نبی جب راستے سے گزرتے تھے تو ہر چھوٹے سے بچے کو سلام کیا کرتے تھے, یہ نبی کریم کا طریقہ تھا. تو اب ہم امام, اگر ہم کو یہ باتیں سب معلوم ہوگی, سیرت نبی اگر ہم کو معلوم ہوگی تو ہم امام کو پہچان سکیں گے. اگر آج ہم سیرت نبی کا مطالعہ نہیں کریں گے, اگر آج ہم کو سنت نبی نہیں معلوم ہوگی, نبی کیسے تبلیغ کیے, نبی کیسے جنگ کیے. میں آپ کو بتایا نا, صرف نبی کریم جو ہے نا صرف بغیر تلوار کے نہیں تبلیغ کیے, بلکہ تلوار کا استعمال بھی کیے. مدنی زندگی میں بدر میں, احد میں نبی کریم نے تلوار بھی اٹھائی ہے, جنگ بھی لڑی ہے, دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا ہے. تو امام مہدی بھی وہی کام کریں گے, نہ یہ کہ ہمیشہ تلوار کو نیام میں رکھیں گے, نہ یہ کہ ہمیشہ تلوار چلائیں گے. جہاں تلوار چلانا ہے وہاں تلوار چلائیں گے, جہاں صلح کرنا ہے وہاں صلح کریں گے, جہاں پر جو ہے اخلاق سے کام لینا ہے وہاں اخلاق سے کام لیں گے, جہاں جو ہے اسی لیے نبی کریم کے بارے میں کیا بتایا گیا قرآن میں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, کہ جو لوگ نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مومنوں پہ رحم کرنے والے ہیں اور کافروں پہ شدت برتنے والے ہیں, کافروں کے مقابلے میں شدید ہیں, حکم خدا کے متعلق شدید ہیں, کمپرومائز نہیں کرتے حکم خدا کے تعلق سے, لیکن اپنے ذاتی دشمن کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ کے دشمن کو پہ سختی برتتے ہیں. تو یہ جس طریقے کے لوگ تھے, رسول اللہ کا طریقہ بھی یہی تھا, ہے نا. رسول اللہ بہت نرم دل تھے, بہت با اخلاق تھے, بہت با کردار تھے, ان کا اخلاق ان کا کردار بہت ہی نیک. نبی کریم बहुत ही नरम अंदाज में बात करते थे, लोगों का दिल नहीं दुखाते थे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। नबी करीम को आता हुआ देखे तो लोगों को जो है सुकून मिलता था कि रहमतुल आलमीन आ रहे हैं, हमारी मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी, है ना। मिसाल के तौर के ऊपर इमाम हमारे तमाम आइम्मा ऐसे थे, हमारे तमाम इमाम वही थे जो नबी करीम की सीरत को पेख्तिया चला करते थे। रास्ते में देखते थे कोई कोई गुलाम खड़ा होकर रो रहा है, कोई कनीज रो रही है, तो आपका दिल तड़प जाता था। उस कनीज से पूछते थे कि आखिर तुम क्यों ऐसा रो रही हो, तो वो बोलती मिसाल के तौर पे कि मेरे पैसे खो गए हैं, मैं बाजार में सौदा लेने के लिए आई थी, मेरे पैसे खो गए, अब मैं घर जाऊंगी तो मालिक मुझे पीटेगा, मालिक मुझे मारेगा। तो इमाम अपनी जेब से पैसा देकर उस कनीज को दिलासा देता। ये जो तरीका है, ये तरीका इमाम भी आके करेंगे, अब कोई गुलाम रोएगा नहीं किसी है, हर गुलाम की मुश्किल, हर गरीब की मुश्किल, हर मुसीबत ज़दा की मुश्किल, हर सितम दीदा इंसान की मुश्किल हल हो जाएगी। इमाम आएंगे तो हमारी मुसीबतों को, हमारी मुश्किलात का हल तलाश करेंगे, हमें जालिम बादशाहों से नजात देंगे, जालिम हुक्मरानों से नजात देंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे हुक्मरान हमारी दौलत को खा जाते हैं, हमारी दौलत से अय्याशी करते हैं, हमको सुखा के खुद जो है ना हम जो है हमारी दौलत से वो फ़ायदा उठाते हैं, हमारी दौलत से ऐश इशरत करते हैं। इमाम आके ऐसे जालिमों का खात्मा करके मिल्लतों को नजात देंगे, कौमों को नजात देंगे, अवाम को नजात देंगे, इंसानियत को नजात देंगे, ताबूत का खात्मा करेंगे, ऐसे बादशाहों का खात्मा करेंगे जो जालिम बादशाह हैं, जो जाबिर बादशाह हैं, और इंसाफ कायम करेंगे, अदालत कायम करेंगे, हुकूमत कायम करेंगे। इमाम महदी हुकूमत तश्कील देंगे, जो हुकूमत अमीरुल मोमिनीन ने जिसको अधूरा छोड़ दिया, जो हुकूमत जो ख्वाब था अमीरुल मोमिनीन का, जिसको अमीरुल मोमिनीन पूरा ना कर सके, जिस तरह अमीरुल मोमिनीन हुकूमत करना चाह रहे थे, वो अपने जिस तरह से वो हुकूमत करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जो चाहते थे यजीदियत का खात्मा हो और हुकूमत इस्लामी कायम हो, वो आप नहीं कर सके ना। तो इमाम उन उम्मीदों को पूरा करेंगे, उन आरज़ुओं को पूरा करेंगे, इमाम अली की तमन्ना को पूरा करेंगे। तमन्नाए अली का नाम इमाम महदी है, इमाम हुसैन की तमन्ना का नाम इमाम महदी है कि इमाम हुसैन जैसा हुकूमत चाहते थे, जैसा निज़ाम चाहते थे, जैसी हुकूमत चाहते थे, वैसी हुकूमत इमाम महदी कायम करेंगे, वैसा दौर आएगा जैसे अमीरुल मोमिनीन चाहते थे। रसूल अल्लाह का दौर फिर जिंदा होगा, फिर सदर इस्लाम के जैसे मुसलमान पैदा होंगे, फिर अबू ज़र पैदा होंगे, फिर मिर्दाद पैदा होंगे, फिर अम्मार पैदा होंगे, ऐसा होगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह का दौर फिर से जिंदा हो जाएगा, अजम और अरब का फ़र्क मिट जाएगा, गोरे काले का फ़र्क मिट जाएगा, अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाएगा, और उसके बाद इंसानियत का दौर शुरू होगा। ये दौर के लिए हम इंतज़ार देख रहे हैं कि इमाम आए और अमेरिका जैसी हुकूमत, इसराइल जैसी हुकूमत, और जो है जो इंसानियत को कुचली हुई है, कुचल रहे हैं, ऐसी हुकूमतों का खात्मा हो, इनका डर दबदबा ख़त्म हो और लोग आज़ादी की सांस ले सकें, इंसानों को आज़ादी दिलाने के लिए, ज़ुल्म तशद्दुद से नजात देने के लिए इमाम महदी आ रहे हैं, ताकि इमाम वो तमाम मसाइल का हल तलाश कर सकें, निकालेंगे कि जो आज इंसान मुश्किलों में, आज इंसान किन किन मुश्किलों में है। इकोनॉमी मुश्किल है नहीं है हमारे पास, भूखमरी है या नहीं है, लोग जो है भूखे हैं या नहीं है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ये इक्तिसादी मुश्किलात का हल भी इमाम तलाश करेंगे। दीनी मुश्किलात का हल भी तलाश करेंगे। आज कितने लोगों के अकीदे खराब हैं, अल्लाह सुबहानहु तआला के ताल्लुक से, तौहीद के ताल्लुक से कितने लोगों की तौहीद बिगड़ी हुई है, अकायद मुश्किलात वो इमाम हल करेंगे, इक्तिसादी मुश्किलात वो इमाम हल करेंगे, माशरे के मसाइल को इमाम हल करेंगे, تمام مسائل کا حل تلاش کریں گے. اور اس طرح سے ساری, کیونکہ نبی کریم کے آنے سے پہلے امت کی حالت کیا تھی, کیا کھاتے تھے لوگ مکے میں, کیا پانی پیتے تھے, گندی نالی کے پانی پیا کرتے تھے, گندے نالیاں بہتے تھے, اس گندے نالیوں کا پانی, کیڑے مکوڑے کا, جانوروں کی طرح رہتے تھے, ننگے پھرتے تھے, لباس کا ہوش نہیں تھا, کسی چیز کا ہوش نہیں تھا, ہے نا, کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا, انسانوں کی جیسی زندگی نہیں تھی, بلکہ آپ دیکھیں جانوروں کی زندگی اس طریقے سے, جنگلی جانور کیسے ہوتے, اس طرح کے جنگلی جانوروں کے انسان تھے. لیکن نبی کی تبلیغ کے بعد اسلام صرف انسان کی عقیدے کو نہیں بدلا, اسلام نے صرف انسان کی فکر نہیں بدلا بلکہ ان کی زندگی کو بھی بدل دیا, ان کے طور طریقے کو بھی بدل دیا, ان کے کھانے پینے کی غذائیں بھی بدل دی. اسلام آنے کے بعد میں لوگ جو ہے اچھا پانی پینے لگے, اچھا کھانا کھانے لگے, انسان بننے لگے, جانوروں کی فہرست سے باہر آئے, جاہلوں کی فہرست سے باہر آئے, آ کر جو ہے انسان بنے, مومن بنے, مسلمان بنے, باکردار بنے. جو دوسروں کا مال لوٹتے تھے وہ اپنی کمائی کا مال دوسروں کو کھلانے لگے. یہ جو تبدیلی نبی کریم لائے تھے ویسی ہی تبدیلی نبی امام مہدی بھی لائیں گے. اگر آج ظلم ہے, اگر آج جو ہے لوگوں کی مشکلات ہیں اور کوئی لوگوں کا مال غصب کیا ہوا ہے, لوگوں کے مال لوٹا ہوا ہے اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے, دبے ہوئے ہیں, کچلے ہوئے ہیں, محروم طبقہ ہے جس کو جو ہے ان کا حق نہیں دیا گیا ہے, ایسے جو طبقے ہیں معاشرے میں, سوسائٹی میں, ان طبقوں کو امام مہدی ان کا حق دلائیں گے. آپ کا اگر حق غصب ہوا ہے تو امام آپ کا حق دلائیں گے. وہی جو امیر المومنین نے کہا تھا کہ اگر کسی کا بھی حق غصب ہوا ہے تو میں اس کو اس کا حق دلاؤں گا اور اس کے ساتھ انصاف کروں گا. تو انصاف اور عدالت برپا کرنے کے لیے امام کا ظہور ضروری ہے. اگر آپ پوچھیں کہ امام کے ظہور کے بعد کیا ہوگا, امام کے ظہور کے بعد دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوگا. وہ انقلاب صرف فکری انقلاب نہیں ہوگا, صرف ذہنی انقلاب نہیں ہوگا, بلکہ پوری طرح سے حکومت امام مہدی عدل اور انصاف کی حکومت ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.